શ્રવણ બેલગોલામાં પૂજ્ય ભાઈ શ્રી લાલચંદભાઈનું તારીખ 1/1/86 સમયસર ગાથા 6 પર પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 116.
મેં મેરા જ્ઞાન કો જાણતા હું, દેખતા અંદર મેં આ જાતા હૈ આત્મા. જ્ઞાની કી અતિન્દ્રિય જ્ઞાન કી તાકાત કોઈ અલૌકિક પૂર્વ હૈ. વો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સે ઉસકા માપ માપ કાઢવા જાય, ક્યા માપ કાઢવા જાય તો માપ નીકળે નહીં. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સે માપ, હા માપ કરને જાય, માપને જાય તો ભી માપ હોતા નહીં હૈ. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સે આત્મા કા અનુભવ હોતા હૈ. આજ તક અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ઉસને પ્રગટ નહીં ક્યા, અને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સે આત્મા એસા હૈ, આત્મા એસા હૈ, આત્મા એસા હૈ, એ સબ કલ્પના હૈ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સે સહી આત્મા કા સ્વરૂપ જાણને મેં આયા નહીં હૈ. વો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન સે આત્મા જાણ લ્યા પ્રત્યક્ષ. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન સે આત્મા પ્રત્યક્ષ જાના, પ્રત્યક્ષ જાના, એસે શુદ્ધ જ્ઞાન સે આત્મા પ્રત્યક્ષ હો જાતા હૈ. વો શુદ્ધ જ્ઞાન અતિન્દ્રિય હૈ. વો મતિ શુદ્ધ જ્ઞાન આદે પરોક્ષ હૈ, સર્વથા પરોક્ષ નહીં હૈ. કથનચિત પરોક્ષ અને કથનચિત મતિ શુદ્ધ જ્ઞાન ભી પ્રત્યક્ષ હૈ. અનુભવ પ્રત્યક્ષ, સ્વાનુભવ પ્રત્યક્ષ, વેદન પ્રત્યક્ષ, પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ નહીં હૈ. પ્રદેશ દિખાઈ જતા જેસે અંધા સાકર ખાય, અને દેખને વાળા ભી સાકર કા સ્વાદ લેતા હૈ, તો ભી સ્વાદ સરખા હૈ. સ્વાદ દોઈ કો એક પ્રદેશ કો એ સફેદ હૈ કે પીલી હૈ સાકર, એસા દેખતા હૈ કેવળી ભગવાન. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ હૈ વો પ્રદેશ કો દિખાઈ દેતા નહીં. ઇસ અપેક્ષા સે પરોક્ષ હૈ, પ્રદેશ દેખને મેં નહીં આયા, ઇસ અપેક્ષા સે પરોક્ષ હૈ. મગર આનંદ કા વેદન આયા તો વેદન કી અપેક્ષા સે ઉત્મતિ શુદ્ધ પ્રત્યક્ષ હૈ. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન હોને સે પ્રત્યક્ષ હૈ. એ અનુભવ કે કાળ મેં પ્રગટ હોતા હૈ. આત્મસન્મુખ હુઆ જાણનારો જણાય છે, ઇતના ભેદ નિકલ જાતા હૈ. પર પદાર્થ કો તો જાણતા નહીં હું, મગર જાણનારો જણાય કે ઉસમે ભી ભેદ હૈ, ઉસમે ભી અનુભવ. એ સત્ય ટીકાની ગાથા મેં પર પદાર્થ કો જાણતા હૈ ઉસમે સાધ્ય કી સ્થિતિ નહીં હૈ. આત્મા આત્મા કો જાણતા હૈ ઉસમે સાધ્ય કી સ્થિતિ નહીં હૈ. જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક હૈ ઉસમે સાધ્ય કી સ્થિતિ હૈ. સાધ્ય યાને મિથ્યા દ્રષ્ટિ કે લીએ સાધ્ય સમ્યક દર્શન, સમ્યક દ્રષ્ટિ કે લીએ સાધ્ય ચારિત્ર, ઓર ચારિત્રવંત કે લીએ સાધ્ય મોક્ષ. ધ્યેય તો સમ્ય એક હૈ, ધ્યેય અલગ હૈ. સાધ્ય સાધ્ય પ્રગટ કરને કી બાત મેં સાધ્ય આતા હૈ. ધ્યેય તો ધ્રુવ ભગવાન જો આત્મા જ્ઞાયક વા ઉસકા અવલંબન કરને સે મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો સાધ્ય બન જાતા હૈ સમ્યક દર્શન. સમ્યક દ્રષ્ટિ કે લીએ ચારિત્ર સાધ્ય હૈ કે સ્વરૂપ મેં લીન હોના, વો ચારિત્ર હૈ. કભી અપૂર્વ અવસર હૈ વો ક્યારે આવશે, ક્યારે મેં સ્વભાવ મેં લીન હો જાઉં. સમ્યક દર્શન હુઆ કુછ પ્રાપ્ત નહીં હુઆ. સમ્યક દર્શન કી કિંમત ક્યા હૈ, ચારિત્ર કી કિંમત હૈ. સમ્યક દ્રષ્ટિ હો, સમ્યક દ્રષ્ટિ કો સમ્યક દ્રષ્ટિ કી કિંમત દેખો. મિથ્યાત્વ કી અપેક્ષા સે સમ્યક દ્રષ્ટિ કી કિંમત કા આ જાતા હૈ. મગર સમ્યક દ્રષ્ટિ, સમ્યક દ્રષ્ટિ મેં ક્યા હૈ, કુછ નહીં. સંતોષ નહીં હોતા હૈ. ચારિત્ર જો સ્વરૂપ મેં રમણ કર જાઉં, જ્યાં એક વિકલ્પ ઉત્પન્ન શુભાશુભ કા ન હોય, નિર્વિકલ્પ ધ્યાન આ જાવે, સ્વરૂપ મેં લીન હું અને પ્રચુર આનંદ કા વેદન આવે, ઇસકા નામ ચારિત્ર. એસી દશા હમકો ક્યારે, ક્યારે મેં જંગલમાં જાઉં, એ રાજપાટ થોડું ગ્રસ્ત અવસ્થા કો ત્યાગ કરકે મેં નિર્વિકલ્પ ધ્યાન મેં જમ જાઉં. બાહી મેં દ્રવ્યલિંગ, અંતર મેં ભાવલિંગ, એસા એ અપૂર્વ દશા કબ આવે મેરી. એસે સમ્યક દ્રષ્ટિ ભાવના કા, ભાવના કા સાધ્ય ચારિત્ર હૈ. ઓબ્જેક્ટ ચારિત્ર હુઆ, ઇસમે ક્યા હૈ, इसमें पूर्ण आनंद नहीं है, ये तो सूक्ष्म ज्ञान है। कहां केवल ज्ञान, मेरे पास केवल ज्ञान, कहां केवल ज्ञान। अने क्या मुनिराज कहते हैं कि सूक्ष्म ज्ञान अल्प ज्ञान समुद्र में बिंदु है, कहां यथा क्या चारित्र, अने क्या एक सूक्ष्म चारित्र उसके साथ मिलान करता हूं तो वो दशा गौण हो जाते हैं। तो चारित्र वर्ण पूर्ण स्वरूप की साध्य की सिद्धि करने के लिए बार बार उपयोग अंदर में लगाता है तो यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान आता है। और बाद में आठ कर्म का अभाव होकर और परिणति पूर्ण परिणति होकर सिद्ध दशा प्रकट होती है, अपूर्व बात है। ये जैन दर्शन ऊंचे ऊंचे चढ़ने के लिए, नीचे नीचे जाने के लिए नहीं, ये नजर ऊंची रखना, नजर ऊंची रखना। विद्यार्थी भी जो पढ़ता है ने तो पहला नंबर जो आता है ने उसकी नजर लेता है, वो नापास हुआ उसके पर नजर करता नहीं है। ऐसे जैन दर्शन की अलौकिक बात है। सम्यक दर्शन हुआ क्या कीमत है, पंचम काल में सम्यक दर्शन की कीमत है, चौथा काल में हजारों लाखों जीव सम्यक दृष्टि है, तो वहां सम्यक दृष्टि की कीमत नहीं है, वहां तो चारित्र वर्ण की कीमत है। ऐसी पंचम काल है ना, सम्यक दृष्टि भी लाखों करोड़ में कोकी प्रकट होता है। ऐसी देखो कि ये जब जानने में आया तब जो एक ज्ञान के पर्याय में जानने में नहीं आया तो अज्ञानी मीठा दृष्टि है, मगर जब ज्ञेय जानने में आता है तब ज्ञाय जानने में आया, इसलिए ज्ञेय कर्ता शुद्धता लागू पड़ती नहीं है। अज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान बनता है। ज्ञायकपणे जे जणायो ते स्वरूप प्रकाशनी अवस्था में पण दीवानी जेम करता कर्मनोने पण होवाथी ज्ञायक छे। देखो पहले पारा में अप्रमत्त केवल ज्ञान से रहित कहा, केवल ज्ञान की पर्याय से रहित कहा, इधर जो शुद्ध ज्ञान है उसे आत्मा से ही कहा। ऐसे इत्यादवाद की जो रमत है, केवल ज्ञान से रहित पहले पाड़ा में प्रमत अप्रमत से रहित कहा कि नहीं है। अभी इधर फरमाते हैं कि जो ज्ञान बहिर्मुख था वो ज्ञान अभिमुख हुआ, जो ज्ञेय को जानते हैं ज्ञान, वो जो इस समय जानने वाला जानने में आया तो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी गए थे और जानते हैं उस समय भी गए जानने में आया, अने स्व जानने में आया उस समय भी, तो निरंतर जानने वाला ही जानने में आता है, उधर पर जानने में आता नहीं, जानने में आने पर भी नहीं बसे गौण हो जाता है, प्रतिमा गौण हो जाता है, ज्ञान ऊर्ध हो जाता है। जो ज्ञान में क्या जानने में आया इस अपेक्षा एक ज्ञान ऊर्ध हो गया, और जो ये ज्ञान में आया वो गौण हो गया। प्रतिमा के सामने खड़ा हो तो भी ज्ञान ही जानने में आ रहा है, अरे ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। ये को जानने के समय ज्ञायक जानने में आवे, और स्वरूप का जब निर्विकल्प अनुभव आता है तब भी ज्ञायक ही जानने में आता है। सविकल्प दशा में जानना और जाना चाहिए, निर्विकल्प ध्यान में भी अपूर्व बात है, साधक की बात। सविकल्प के काल में जो पर ज्ञेय जानने में आया उस समय जो जाननारो जणाय छे ते कारणे सम्यज्ञान टके छे, अने जो जाननारो न जणाय तो सम्यज्ञान टकतुं नथी, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। संध्या एक तके निर्विकल्प ज्ञान हो गया, बाद में सविकल्प दशा आती है, जरूर आती है। साधक है ने पूर्णानंद की प्राप्ति, चारित्र तो है नहीं, सम्यक दृष्टि है। अरे चारित्र वन को भी सविकल दशा छठे गुण स्थाने आ जाती है, और ये द्रव्य शुद्ध ज्ञान में प्रतिभास होता है। उस समय द्रव्य शुद्ध ज्ञान में प्रतिभास हुआ, वही समय केवल द्रव्य शुद्ध जानने में आता है तो अज्ञानी है। अरे ये द्रव्य शुद्ध जानने में आता है, शुद्ध ज्ञान में वही समय शुद्ध ज्ञान में जाननार जनाय छे, ते कारणे निर्जरा थाय छे, एने बंद थतो समय समय पर सविकल्प दशा हो के निर्विकल्प ज्ञान अवस्था हो। अपना ज्ञान में अपना आत्मा जानने में आ रहा है, वो जो ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक जानने में आया तो आत्मा कर्ता अने अपनी जो ज्ञान की पर्याय कर्म ऐसा जो भेद होवे तो सविकल्प दशा है। आत्मा कर्ता ने राग मेरा कर्म वो तो अज्ञान दशा है। ध्यान रखना ये चीज अलौकिक है। समयसार की छठी गाथा सारा समयसार का निचोड़ सार है। संक्षेप रुचि वाला जीव तो ये बार गाथा का अध्ययन करने से समय प्रश्न प्रकट कर लेता है। ऐसा चैतन्य आचार्य भगवान की टीका है। दो टीका है, एक अमरचंद्र आचार्य की टीका और एक चैतन्य आचार्य भगवान की टीका। चैतन्य आचार्य भगवान ने लिखा कि कोई संक्षेप रुचि वाला जीव, तीव्र रुचि वाला जीव हो तो बार गाथा का अध्ययन करने से उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और विस्तार रुचि वाला जीव हो, रुचि कम हो, थोड़ा प्रमादी हो तो 415 गाथा पढ़ने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जो भाव सो समय साथ को बने, भाव से आत्मा का लक्ष्य से और प्रयोजन, पंडित होने का प्रयोजन नहीं, मैं समय साथ पढ़कर दूसरे को समझाऊं, प्रयोजन फिर गया। पर को समझाने के लिए समय सार पढ़ना है कि केवल अपने हित के लिए है, तो ऐसे आत्मार्थी मोक्षार्थी होकर कोई जीव बार गाथा भाव से बने, रुचि से बने, पढ़े तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। वो महान ज्योतिषी है आचार्य भगवान है ने, तो महान ज्योतिषी है, अने सर्वज्ञ भगवान तो परम ज्योतिषी है। उसने देख लिया, उसको उसने पढ़ने वालों को जान लिया कि जो भाव से पढ़े बाहर जाता तो समय कृष्ण प्रकट हो जाएगा, और रुचि जरा कम है, व्यापार रोजगार अग्नि में जाती है और फिर वहां से लाकर इधर आती है, ऐसा अप डाउन आता है ना, तो इसके लिए 415 गाथा है तो उसको समय कृष्ण प्रकट हो जाएगा। विश्वास करो ज्योतिषी महान है, अपर है। ये आजकल का ज्योतिष की बात तो फिर जाती है, मगर इसकी बात फिरने वाला नहीं है। अध्ययन कर आत्मार्थी होकर मोक्षार्थी होकर एक समय सार को पढ़ और निश्चय व्यवहार दो समझकर व्यवहार को गौण कर, व्यवहार नहीं का विषय लक्ष्य छोड़ दे। व्यवहार नहीं का विषय है मगर गौण करने के लिए है, मुख्य करने के लिए व्यवहार नहीं का विषय है ही नहीं। व्यवहार नहीं को मुख्य करता है वो मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार नहीं को गौण करके निश्चय नहीं कर मुख्य करके उसका लक्ष्य करता है तो निश्चय व्यवहार दो का ज्ञान हो जाता है, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। मुख्य गौण उसमें नहीं है, प्रमाण में मुख्य गौण नहीं है। जब आत्मा पक्षातिक्रांत होता है तब आत्मा का अनुभव करता है तो निश्चय और व्यवहार दो नहीं का ज्ञाता बन जाता है, मगर पक्षपात्रता नहीं है। इसी बात अपूर्व है तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि जो केवल ज्ञान से रहित का अभी शुद्ध ज्ञान हुआ उससे सहित आत्मा, हाँ तो शुद्ध ज्ञान कर्म है कि आत्मा कर्म है कि राग कर्म है, कि राग तो आत्मा का कर्म है ही नहीं। मैं करता ने राग मेरा कर्म वो तो अप्रतिभूत का लक्षण, अज्ञानी का लक्षण है, वो तो मूढ़ है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। मैं करता अने भगवान की भक्ति का राग मैंने किया, वो तो मिथ्या दृष्टि। उसके बाद तो कड़क है, बात कड़क लगती है। आपके चेहरा मैंने मान किया, ऊंचे ऊंचे चढ़ने की बात है। शुभ भाव छोड़कर पाप का परिणाम करना, वो तो महापापी है। वो तो दूर है बहुत, समझ गया। उन छोड़कर पाप का करना ऐसा उपदेश तो अन्य मत में भी नहीं है, मगर जो शुभ भाव में आया शुभ भाव में, मगर मैं करता ने शुभ भाव मेरा कर्म, शुभ भाव को कर्म बनाया, वो अज्ञान है। ज्ञान को कर्म बनाना चाहिए, आत्मज्ञान को कर्म बनाना चाहिए। वो आत्मज्ञान को कर्म नहीं बनाया, शुभ भाव को कर्म बनाया, अप्रतिभूत का लक्षण है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अंतरोति किम्, पर भाव से कर्ता आत्मा मोहयम व्यवहारी नाम। व्यवहारी जीव का व्यामोह ज्ञान मिथ्या दृष्टि है कि शुभ भाव मेरा कर्तव्य है। तेरा कर्तव्य ज्ञान दर्शन चारित्र का परिणाम कर्तव्य है कि आश्रव तेरा कर्तव्य है। समीरा प्रकट करना वो कर्तव्य है कि आश्रव प्रकट करना कर्तव्य है। अभी समझ में आया ना, थोड़ा अभी थोड़ा खुलासा आया तो संतोष हुआ उनको। देखो ऐसी बात है कि कोई रोगी है ना, रोगी बहुत कड़ा रोग हो गया, बहुत तो इसको बहुत इंजेक्शन बराबर सरखा लगाता है तो रोग जाता है। ऐसे अनादि काल से मिथ्यात्व का रोग है ना, देह का रोग की बात नहीं है, आत्मा में भी एक रोग है अनादि काल से। अपने स्वभाव को भूलकर पर भाव पर द्रव्य को मेरा मान लेना वो ज्ञान है। ऐसे अज्ञानी जीव के लिए कभी कभी कड़क बात कहे तो समझना कि आज मेरे पर बहुत करुणा आ गई, ऐसा लेना। ज्ञानी प्रत्येक रोष नहीं करना, ज्ञानी कभी अपने लाभ के लिए कहे कि क्या समझता नहीं है, गधा है। पिता पुत्र को कहते हैं कि नहीं, तो क्या पिता को पुत्र पर द्वेष है कि समझाने की भावना से कड़क शब्द कहते। ऐसे आत्मा करता अने शुभ भाव मेरा कर्म, ऐसी करता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव ने अनादि काल से किया, मगर ज्ञान मेरा कर्म ने आत्मा करता ऐसा भाव उसने ख्याल में लिया नहीं है। जो ज्ञान कर्म बनता है तो राग व्यय हो जाता है। जब ज्ञान प्रकट नहीं होता है, कर्ता का कर्म ज्ञान नहीं होता है, तहां तक राग कर्ता का कर्म भाषित होता है, वो ज्ञान मिथ्या दृष्टि है। अभी इधर तो इससे सूक्ष्म बात करना है थोड़ी, कि आत्मा कर्ता अने ज्ञान की पर्याय कर्म ऐसा कर्ता कर्म का भेद करता है तो भी ज्ञान कर्म नहीं होता है। भेद का लक्ष्य से विकल्प कर्म बन गया, वो जो अनादि का है वही रहा। सूक्ष्म बात है, टाइम हो गया, अभी कल इसका विस्तार ज्यादा आएगा। हाँ, 2000 वर्ष पहला कुलकुल आचार्य भगवान या शास्त्र मद्रास की दूर एसी माइल ओंदर हिल पर तालपत्र पर शास्त्र रचना करी। एना पछी 1000 वर्षे अमरचंद्र आचार्य थया, तेओ श्री आत्मख्याति नामनी टीका नी रचना करी संस्कृत में। एनो अनुवाद आज थी 200 वर्ष पहला जयपुर में पंडित जयचंद जी थया, तेओ श्री ठुंडारी में अनुवाद कर्यो। त्यार पछी मुंबई में परम शुद्ध प्रभावक मंडो जेनी स्थापना श्रीमद राजचंद्र जीए પોતાની હયાતીમાં કરેલી, ત્યાંથી આ શાસ્ત્ર બહાર પડ્યું. 75ની સાલમાં બહાર પડ્યું અને 78ની સાલમાં આપણા ઉપકારી, અચ્છા આપણા ઉપકારી જો કાંજી સ્વામી પરમ પૂજ્ય ઉસકે હસ્તમાં આયા તો ઝવેરીને સમયસાર કા પરખ કર લિયા કે ઓ તો અશરીરી હોને કા યે શાસ્ત્ર હૈ. તો એ સારા સમયસાર કા વ્યાખ્યાન જાહેર મેં મુમુક્ષુ કે બીચ મેં 45 સાલ તક યાને 19 વખત સમયસાર કા પ્રવર્તન કિયા. જાહેર મેં પ્રવર્તન 19 દફે કિયા, 19 વાર એક હી સમયસાર કા. એસા તો બહુ શાસ્ત્ર કા પ્રવર્તન હો ગયા, પરમાત્મા પ્રકાશ, દ્રવ્ય સંગ્રહ, ગોમટસાર, ઇષ્ટોપદેશ, સમાધિ, શતક, બહુ શાસ્ત્ર કા જાહેર મેં પ્રવર્તન તો હો ગયા, મગર યે 19 વખત હુઆ. અંદર મેં તો ઉસને સેંકડો વખત અધ્યયન કરી લ્યા, ઉસમે માલ દેખા કે અજ્ઞાની પ્રાણી કે લીએ યાને અપ્રતિભૂત કે લીએ એ શાસ્ત્ર કી રચના હૈ. કોઈ કહે કે એ શાસ્ત્ર મુનિ કે લીએ હૈ, એસા હૈ નહીં. અપ્રતિભૂત કે લીએ મેં શાસ્ત્ર બનાતા હું, અજ્ઞાની જીવ કે લીએ જો એ શાસ્ત્ર કા પઠન પાઠન આત્મા કા લક્ષ પૂર્વક કરતા હૈ, ઉસકો મિથ્યાત્વ કા અભાવ હોકર સમ્યક દર્શન પ્રગટ હો જાતા હૈ. એસા ભાગવતી શાસ્ત્ર હૈ, એ શાસ્ત્ર ભાગવતી શાસ્ત્ર હૈ. વો એક 415 ગાથા હૈ, ઉસમે સે છઠ્ઠી ગાથા કા સ્વાધ્યાય ચલતા હૈ. છઠ્ઠી ગાથા કા પહેલા પારામાં કહા કે એ જો ગાયક શુદ્ધાત્મા હૈ, શુદ્ધાત્મા કહો કે ગાયક આત્મા કહો એક હી બાત હૈ, વો જો શુદ્ધાત્મા ગાયક ભાવરૂપ એક રૂપ હૈ, વો શુભ ઓર અશુભ જો બહિર્મુખ પરિણતિ ઉત્પન્ન હોતી હૈ, શુભાશુભ પરિણતિ ઉત્પન્ન હોતી હૈ, વો રૂપ હોતા નહીં હૈ. ઇસલિયે વો શુભાશુભ ભાવ કા કરતા ભોગતા નહીં હૈ. એસે ગાયક તત્વ કો દ્રષ્ટિ મેં લેને સે આત્મા કા અનુભવ હોતા હૈ. તો શુભાશુભ ભાવ સે રહિત હોને સે વો કરતા ભોગતા નહીં, એસા કહા. એસી દ્રષ્ટિ દેને સે સમ્યક દર્શન તો હુઆ, સાથ મેં સમ્યક જ્ઞાન ભી પ્રગટ હુઆ. તો દ્રષ્ટિ પ્રધાન તાસે પહેલા પારા લિખા, અભી જ્ઞાન પ્રધાન તાસે સમજાતે હૈ. હે તો સમય એક મેં, એક સમય મેં સમ્યક દર્શનાં ચારી પ્રાણી મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ હોતા હૈ. તીનો અવયવ મોક્ષ માર્ગ કા જો તીન અવયવ હૈ, એક સમય મેં આત્મ સન્મુખ ઉપયોગ જબ આતા હૈ, તબ નિર્વિકલ્પ ધ્યાન મેં તીન અવયવ પ્રગટતા હૈ. મોક્ષ માર્ગ કી પ્રગટતા નિર્વિકલ્પ ધ્યાન મેં હોતી હૈ. સમ્યક દર્શન કા જન્મ સ્વિકલ્પ મેં નહીં હોતા હૈ, નિર્વિકલ્પ ધ્યાન મેં પ્રગટતા હોતી હૈ. ઉસકે સાથ સાથ એક સમ્યક જ્ઞાન, ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન ઉસકી સાથ પ્રગટતા હૈ, ઓર સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર સ્થિરતા લીનતા એસા ભાવ ચારિત્ર કા ભી પ્રગટ હોતા હૈ. તો દ્રષ્ટિ અપેક્ષા સે પહેલા પારા કહા, ને દૂસરા પારા જ્ઞાન અપેક્ષા સે કહા કે દાહ્યના આકારે થવાથી યાને લકડી હૈ ઉસકો જો જલાતા હૈ અગ્નિ, એસે કહા જાતા હૈ, અગ્નિ લકડી કો જલાતા નહીં હૈ, ક્યોંકિ અગ્નિ લકડી કો સ્પર્શ કરતી નહીં હૈ. લકડી કા उष्ण रूप होना उस स्वतंत्र उसकी पर्याय के लायका से वो अग्नि रूप प्रणमता है, तब बाह्य अग्नि निमित्त मात्र कहा जाता है। अग्नि से लकड़ी जलती नहीं है कहा जाता है, मगर जलती नहीं है तो आकाश भी जलना चाहिए, आकाश तो जलता नहीं है। मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर अनादि काल से जीव की कर्ता कर्म की भ्रांति हो गई। अग्नि निमित्त है, लकड़ी जो है उष्ण रूप प्रणमती है वो नैमित्तिक है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दो पदार्थ के बीच में कर्ता कर्म संबंध बताता नहीं है, अकर्ता संबंध बताता है। अग्नि जो ईंधन रूप होवे तो ईंधन रूप ही हो जावे और ईंधन अग्नि रूप हो जावे, मगर अग्नि तो अग्नि है ना, ईंधन तो ईंधन है, ईंधन की अग्नि नहीं है, अग्नि ईंधन की नहीं है। पूर्व में भी भूतकाल में भी अग्नि ईंधन की नहीं थी, भविष्य काल में भी अग्नि ईंधन की नहीं होगी। प्रतिकरण प्रत्याख्यान आलोचना तीन तीन भाव उसमें समाविष्ट हो गया है। ऐसे ये अग्नि का दृष्टांत दिया कि लकड़ी को जलाता है, इसलिए अग्नि को दहन उष्ण कहा जाता है। तो वो तो अग्नि की सिद्धि में अग्नि स्वयं सिद्ध न रहेगी, लकड़ी को जलावे तो अग्नि है ऐसा है नहीं, दो पदार्थ स्वतंत्र सत अहेतुक है, मगर दूसरे को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। अग्नि का स्वरूप जो जानता नहीं है इसको कहा जाता है कि अग्नि का स्वरूप क्या है कि बलने योग पदार्थ को बाड़े जलावे, इसका नाम अग्नि है, अग्नि है, उष्ण अग्नि है ऐसा समझाया जाता है। मगर अग्नि तो स्वयं सिद्ध अपने से अग्नि है, लकड़ी को जलावे तो अग्नि ऐसा नहीं है। तो वो दाहिक अशुद्धता उसको नहीं लागू पड़ती है, यानी जो लकड़ी को जलावे सो अग्नि वो तो स्वयं सिद्ध अग्नि उपादान रूप नहीं रह सकती है, वो तो उपादान पराधीन हो गया। मगर ऐसा है उपादान और निमित्त स्वतंत्र दो पदार्थ भिन्न भिन्न है, उपादान के अंदर निमित्त की नास्ति है और निमित्त में अंदर उपादान की नास्ति है, दो के बीच में अत्यंत अभाव है। स्वद्रव्य अग्नि का स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव भिन्न है, अभेद है, और लकड़ी का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अग्नि से भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। ऐसे तो भी दायित्व शुद्धता उसको लागू नहीं पड़ती है, यानी लकड़ी को जलावे तो अग्नि है तो अग्नि का सत स्वतंत्र नहीं रहा तो पराधीन हो गया। मगर समझाने के लिए कहा जाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर कर्ता कर्म का उपचार किया जाता है, वो उपचार की बात है, मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर कर्ता कर्म की भ्रांति जीव को हो गई है। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो पदार्थ का अकर्तापना प्रसिद्ध करता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का करता है ऐसा प्रसिद्ध करता नहीं है। तो यहां दायक शुद्धता अग्नि को लागू पड़ती नहीं है कि जो जलाती है तो अग्नि ऐसा है नहीं, उस रीति से दृष्टांत दिया। तेवी रीते ज्ञाकार थवाथी जो ज्ञान है उसमें ज्ञेय का प्रतिभास होता है, तो ज्ञान ज्ञेय से हुआ ऐसी पराधीनता ज्ञान में नहीं। ज्ञान तो ज्ञान से है, जिस अग्नि तो अग्नि से है, लकड़ी से नहीं है। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान से ही है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, अने ज्ञान ज्ञेय का नहीं होता है। जो ज्ञान ज्ञेय का होवे तो ज्ञान ज्ञेयमय हो जाता है। पुद्गल से ज्ञान नहीं होता है और पुद्गल का भी ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान पुद्गल का होवे तो पुद्गलमय ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का व्यवच्छेद हो जाता है। मगर ज्ञान अपनी सत्ता में है, ये अपनी सत्ता में है, दो की सत्ता न्यारी न्यारी है। एक की सत्ता में दूसरा की सत्ता के अभाव है, अंदर में अति नाप्य अनेकांत है। ऐसे ज्ञाकार अवस्था में ये ने जानवानो काल जारे छे है, ये जब प्रतिभास होता है ज्ञान में, इसलिए वो भाव को ज्ञायक ऐसा जगत को प्रसिद्ध है, ऐसे जगत को प्रसिद्ध है। ये को जाने तो आत्मा, ये को जाने तो जीव, नेनो जाने तो ज्ञायक, ऐसी प्रसिद्धि जगत को है। जैसे लकड़ी को जलावे, काष्ठ को बाले सो अग्नि, ऐसी प्रसिद्धि जगत को है। मगर अग्नि अग्नि में है, काष्ठ तो काष्ठ में, काष्ठ को अग्नि ने छुया भी नहीं है, स्पर्श नहीं किया है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श करता नहीं है, तो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श करे तो दो द्रव्य की सत्ता रहती नहीं है, ऐसा समय सार की तीसरी गाथा में पाठ है। ऐसे इधर फरमाते हैं कि जब ये ज्ञान में जानने में आया तो वो ये से ज्ञान नहीं हुआ और ये का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान तो ज्ञान का ही है, ज्ञान तो ज्ञान का ही है, मगर जिसको ज्ञान की स्वतंत्र स्वतः सिद्ध सत अहेतु व्यक्ति का ख्याल नहीं आता है, उसको ऐसा लग जाता है कि ये आया तो ये का ज्ञान हुआ, ये है तो ये का ज्ञान हुआ, और ज्ञान ये का हुआ। मैंने स्पर्श जाना, मैंने रस को जाना, मैंने गंध को जाना, वो भाव इंद्री का कर्ता बन जाता है, और भाव इंद्री वो कर्ता का कर्म बन जाता है, वो अज्ञान है। सूक्ष्म बात है, राग से तो आत्मा जुदा पड़ सकता है, क्योंकि राग द्वेष क्रोध मान माया का परिणाम जो है वो तो कषाय है, और इससे तो आकुलता उत्पन्न होती है। जब कषाय की प्रकटता होती है तब आत्मा विशेष अपेक्षा से दुख का भोगता है, वही समय सामान्य अपेक्षाएं अभोगता रहता है। क्या कहा? जब कषाय के पर्याय में उत्पन्नति होती है तब वो आत्मा विशेष अपेक्षा से दुख का भोगता बनता है, तो भी सामान्य अपेक्षा से जो आत्मा है वो तो अभोक्ता रहकर, अभोक्ता रहकर पर्याय में वो भोक्ता बन जाता है। तो इसी स्थिति में जो ज्ञान है, वो ज्ञान में ये जानने में आया तो वो ये जानने में आया, वो भाविंद्री से जानने में आया, भाव इंद्री से ये ज्ञान हुआ, भाव इंद्री ज्ञान की प्रकटता हुई, द्रव्य इंद्री का अवलंबन लेकर पर गेय का संबंध वाला जो ज्ञान है, गेय का संबंध वाला जो ज्ञान है वो भाव इंद्री है। तो मैं पर को जानता हूं, इसमें भाव इंद्री का जन्म हो गया, अतीन्द्रिय ज्ञान का नाश हो गया। तो आत्मा कर्ता ने राग मेरा कर्म, वो तो भ्रांति अज्ञान मिथ्या तो अध्योषण है ही, वो तो है ही, मगर मैं ज्ञाता ने ये षट द्रव्य मेरा ज्ञेय, ऐसे ज्ञेय की प्रसिद्धि करने वाली जो भाविंद्री है, खंड ज्ञान है, उससे आत्मा भिन्न है। ज्ञेय से तो आत्मा भिन्न है, मगर ज्ञेय को प्रसिद्ध करने वाली जो भाव इंद्रिया है पांच, और छठा भाव मन है, उससे भी मैं भिन्न हूं, क्योंकि मैं अतीन्द्रिय ज्ञान मैं आत्मा हूं। इसलिए वो भाव इंद्री कर्ता का कर्म नहीं है। जहां तक कर्ता का कर्म राग होता है, तहां तक अज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है। जहां तक कर्ता का कर्म इंद्री ज्ञान बनता है, कर्म यानी कार्य, कर्म ने यानी कार्य की प्रकटता होती है समय समय पर, तहां तक वो अज्ञानी है। आत्मदर्शन इंद्री ज्ञान से होता नहीं है। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि काल से राग से हो या इंद्रिय ज्ञान से हो, एक ही बात है। अभी जब वो ये ज्ञान में प्रतिभास होता है, तब वही समय लिखते हैं आचार्य महाराज कि ये ज्ञान में प्रतिभास होता है तब ये कृतशुद्धता लागू पड़ती नहीं है ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में। क्यों? सम्यक ज्ञान में ज्ञेय कृतशुद्धता पराधीनता लागू पड़ती नहीं है। क्यों? कि जब ज्ञेय का प्रतिभास ज्ञान में होता है, तब ज्ञाकार अवस्था में ज्ञेय का जब प्रतिभास होता है, वही समय ज्ञायकपणे जे जनायो, ज्ञेय पणे नहीं जनाता, ने ज्ञेय का ज्ञान पणे पण नहीं जानने में आता, ज्ञायकपणे जनाया शब्द है ने, ज्ञात ज्ञात हो संस्कृत का शब्द है, अन्व्यार्थमा ज्ञात हो ऐसा शब्द है, उसका अर्थ क्या, ज्ञायकपणे जनायो, जो अनुभव के काल में आत्मा ज्ञायक पणे जानने में आया, पहला समय जो ज्ञायक पणे जानने में आया, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति के काल में, अनुभव के काल में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा ज्ञायक पणे ज्ञान ने ज्ञायक पणे जान लिया, पहला समय जो जाना, दूसरा समय भी ऐसा ही जाना, तीसरा समय ऐसा जाना, समय समय पर शादी अनंत काल ऐसा ही जानता है ज्ञानी। तो अल्प काल में केवल ज्ञान की प्रकटता होती है। फिर से अच्छा, ये भाव इंद्री है ना, भाव इंद्री खंड ज्ञान, जिसे राग है ने, वो दुश्मन है आत्मा का, मध्यघातक भाव वाला है, अनिष्ट है, आत्मघाती परिणाम है, चाहे शुभ भाव हो के अशुभ भाव हो। ऐसे ये जो भाव इंद्री है, उसको मोहराजा ने ज्ञान नाम रखा, मोहराजा ने शास्त्र ज्ञान, ये मोटर का ज्ञान, पर का ज्ञान, उसका नाम ज्ञान, मोहराजा ने उसका नाम ज्ञान रख दिया, सर्वज्ञ भगवान ने उसका नाम रखा है ज्ञेय। उसमें ज्ञान है नहीं। पाटिल जी ये गाथा बहुत बढ़िया है, वो गाथा में अनुभव हो सकता है, हो जाता है अनुभव, ऐसी गाथा है। राग से तो आत्मा भिन्न है, वो बात तो शास्त्र में ठेक ठेकाने आती है, आश्रव से आत्मा जुदा है, ऐसा भेद ज्ञान की बात तो बहुत आती है। मगर इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान ये द्रव्य इंद्रिय की बात नहीं है, वो तो पुद्गल की अवस्था है, उसमें तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो शरीर परिणाम के प्राप्त जो द्रव्य इंद्रिय है, इससे तो आत्मा भिन्न है। मगर द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन लेकर जो सूक्ष्म ज्ञान जानने का काम करता है, इसका नाम भाव इंद्रिय है। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय अने अतीन्द्रिय, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय अने अतीन्द्रिय। अभी बात चलती है भाव इंद्रिय की। जो इंद्रिय ज्ञान द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करती है जानने की क्रिया, वो आत्मा का बड़ा भारी दुश्मन है। उसको जीतना सामान्य जन समुदाय कषाय की मंदता में अटक गया है, भूला पड़ा है। सामान्य, सब सामान्य जन समुदाय, जैन जैनेतर कोई भी हो और पंडित लोग, ये भाव इंद्रिय को ज्ञान मानकर बैठा है। भाव इंद्रिय ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान अपने को प्रसिद्ध नहीं करती है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है, पर ज्ञेय है, ध्येय रूप ज्ञेय है। क्योंकि वो जो ज्ञान है वो ज्ञेय का संबंध वाला ज्ञान है। जैसे सब्जी का साग का लोलुपी है ने, तो मीठा का खारापना का स्वाद देता है ने, तो खारापना का स्वाद देता है वो सब्जी के संबंध वाला खारा का स्वाद देता है। सब्जी से भिन्न भिन्न कर एक ला सीधा नमक का लवण का स्वाद लेता नहीं है, जो साग का लोलुपी है। यो ऐसे ज्ञेय लुब्ध जीव, ये का संबंध वाला जो ज्ञान है इसका नाम है अज्ञान है, उसका स्वाद लेता है। ये का स्वाद तो अज्ञानी लेता ही नहीं है। तो एक ये का जो संबंध वाला जो ज्ञान है उसका नाम भाव इंद्रिय है। वो भाव इंद्रिय को जीतना महावीर्यवान का काम है। शास्त्र ज्ञान को जीतना पड़ेगा जो आत्मज्ञान करना हो तो। शास्त्र सन्मुख वाला ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, भाव इंद्रिय, वो आत्मा का कर्म नहीं है, आत्मा का कार्य नहीं है। शास्त्र पढ़ना आत्मा का कार्य, अरे ये क्या कहा, तो क्या पढ़ना नहीं भैया? पढ़ने का काल आता है, मगर वो शास्त्र सन्मुख का जो इंद्रिय ज्ञान है उसको तू, मैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान मय आत्मा हूं, वहां नहीं पहुंच सकता हूं, तो ये इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है, मगर उसको जीतने का शास्त्र में लिखा है। तू उससे जीत गया है, तू उसको जीत ले, तू जीता गया हो तू उसको जीत ले, तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होगा, ने आत्मा का दर्शन होगा। ये बात ऐसी नहीं है कि मुनि के लिए है, ये शास्त्र अज्ञानी अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए है। क्योंकि नव तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो इसमें नव तत्व भरा है, और क्या है, हैं? नव तत्व का जो श्रद्धान, सात तत्व नव पदार्थ जो कहो, तो नव तत्व का जो श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है, तो इसमें नव तत्व का ही है। कोई हमको पूछे आप समयसार क्यों पढ़ता है, हम तो नव तत्व का अध्ययन करता है। अच्छा, नव तत्व तो हम तो अध्ययन करता है, तो ना ही नहीं बोली सके कोई, कोई ना ही बोली सके नहीं। अभी ये भाई साहब का जो सगा है ने बेंगलोर में कहा ने कि ये समन्वय करना चाहिए सबको, यानी अपने जैन मत में मतभेद है ने, तो साथ में बैठकर, तो वहां विचार आया कि नव तत्व सामने रखो, सबको मान्य है, स्थानकवासी श्वेतांबर दिगंबर तुलसी तेरापंथी कोई भी जैन हो, जैन को तो मान्य है कि नहीं, बस खत्म हो गई बात। सामने नव तत्व की चर्चा करो, जो उसमें खरा हो अपना लो। तो ये दिगंबर शास्त्र में जो नव तत्व का बयान आया है ऐसा कई जगह पर नहीं, ये अनिशुद्ध सत्य है। तो इसमें हम समाचार पढ़ते हैं तो नव तत्व का अध्ययन करता है तो करना चाहिए, तो हम नव तत्व का अध्ययन करता है कहो कि समय समाचार का अध्ययन करो, एक ही बात है, दूसरी बात तो है नहीं। तो इधर आचार्य महाराज एक ऐसी भूल भुलौनी हो गई है, उसके भूल निकालने के लिए कहते हैं आचार्य महाराज कि जो ये ज्ञान में जानने में आया वो ज्ञान तेरा कर्म है, कि जो ज्ञान में आत्मा जानने में आवे वो तेरा कर्म है, एक घड़ी जानने में आवे घड़ी तो तेरा कर्ता का कर्म है ही नहीं, क्यों वो तो भिन्न पदार्थ है पाटिल जी, मगर घड़ी जानने में आया वो जो ज्ञान हुआ वो मेरा है, मर गया भाव मरण हो गया, ये घड़ी मेरी है ऐसी जो ममता किया तो भाव मरण है ही, मगर घड़ी मेरी नहीं है, घड़ी का ज्ञान मेरा है, घड़ी का ज्ञान तेरा है कि आत्मा का ज्ञान तेरा है, ये क्या बात है। गौतम भाई उन्नार से विचार नहीं किया है, व्यापार में तो बुद्धि बहुत चलती है मगर इसमें ये भी व्यापार है, ये ज्ञान का व्यापारी है। तो एक घड़ी मेरी है ऐसी ममता भाव वो तो भाव मरण है मिथ्या तो है, मगर एक घड़ी का ज्ञान मेरा है अने मैं इसका करता हूं अने ज्ञान मेरा कर्म है वो तो भाव मरण हो गया। इंद्रिय ज्ञान आत्मा का कर्म नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान से पर को जानना, पर को जानने का साधन भी इंद्रिय ज्ञान नहीं है। आम थे ये हाथ आम थो जी हजमजा थो थी, पर तो मेरा नहीं है, मगर पर को जानने के लिए जो इंद्रिय ज्ञान है वो पर को जानने का साधन नहीं है। कर्ता कर्म का अनन्यपणा, कर्ता ही आत्मा अने कर्म भी, कर्ता आत्मा अने राग कर्म ऐसा नहीं, आत्मा कर्ता ने इंद्रिय ज्ञान कर्म ऐसा नहीं, आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा जाना, तो आत्मा जाननारो हुआ तो कर्ता हुआ, अने आत्मा ने आत्मा को जाना तो आत्मा ही कर्म हो गया, आत्मा ही यही होगा, परिणामी आत्मा कर्ता ने परिणामी आत्मा कर्म, अपरिणामी तो करता है मगर अपरिणामी पर दृष्टि गई तो आत्मा राम हो गया, मैं तो ज्ञायक हूं मैं तो जाननार हूं। जाननहार जणाय छे हर समय, तो ज्ञायकपणे जे जणायो ते स्वरूप प्रकाशनी अवस्था में पण कर्ता कर्म अनन्यपण होवा थी ज्ञायक छे। क्या कहा सूक्ष्म बात है कि जानने में आया आत्मा तो जाननारो आत्मा, तो जाननार सो कर्ता अने जो जणायो आत्मा सो कर्म, अभेद अपेक्षा है तो आत्मा ही कर्ता आत्मा ही कर्म है, और भेद अपेक्षा से देखो तो आत्मा कर्ता अने अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा का कर्म अने इंद्रिय ज्ञान ज्ञाता ना ये। फिर से क्या कहा कि जब अंतर्मुख होकर आत्मा का दर्शन हुआ ज्ञायक भाव जानने में आया, भाव शुद्ध ज्ञान में, अतीन्द्रिय ज्ञान में, तभी से जो आत्मा को जाना, तो जाननार तो करता, अने जनाया कौन? आत्मा के देवगुरु शास्त्र जनाया, देवगुरु शास्त्र नहीं जानने में आया। अंतर्मुख उपयोग होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान मई भगवान आत्मा के साथ तन्मय होकर जानता है, तो जाननारो करता अने जनायो तो कर्म अभेद, और भेद अपेक्षा से आत्मा करता अने ज्ञान की जो पर्याय प्रकट हुई वो कर्ता का कार्य कर्म, भेद अपेक्षा से, अभेद अपेक्षा से आत्मा ही कर्ता ने आत्मा ही कर्म, वो सटकारक अभेद हो जाता है। अनुभव के काल में सटकारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण अभेद रूप बन जाता है, वो भेद दिखता नहीं है। समझाने के लिए भेद आता है का आत्मा कर्ता अने ज्ञान आत्मा का कर्म। जब ज्ञान आत्मा का कर्म बनता है तब इंद्रिय ज्ञान और राग कर्ता का कर्म बनता नहीं है। तो इंद्रिय ज्ञान तो है, राग भी थोड़ा है साधक को, तो इसका क्या स्वरूप? के वो ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है, कर्ता का कर्म बनता नहीं। कर्ता का कर्म बने तो एकत्व हो जाता है, जो राग कर्ता का कर्म बने तो राग के साथ एकत्व बनता है, विभक्त हो गया तो एकत्व बनता नहीं है, तो राग का ज्ञाता रहता है। ज्ञायक का ज्ञाता हुआ तो राग का ज्ञाता, अतीन्द्रिय महापदार्थ का ज्ञाता हुआ तो इंद्रिय ज्ञान का भी ज्ञाता रहता है, कर्ता का कर्म बनता नहीं। ये साधना की विधि है। जिसने आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन किया, ऐसे कुनकुंडाचार्य आदि भगवान बहुत भावलिनी संत सब हो गया, वो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करने वाला वो शास्त्र लिखता है, तो अपने को आत्मा का अनुभव कैसे होवे, जो अपने को हुआ वो दूसरे को बताते हैं, और कोई लायक भी हो तो विधि अपना लेता है, अपना काम कर लेता है। सर्वज्ञ भगवान और उसकी परंपरा में गणधर आदि संतों जो हो गया, इसकी तुलना में कोई आता नहीं है। ऐसी अपूर्व बात, अंदर में से ज्ञान में बैठ जावे, ज्ञान में बैठे भी बात है कि ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जनायो, जनायो जना से नहीं, क्या कहा? जानने में आया, जानने में आया, हमको जानने में आया, और जानने में आया वो शास्त्र लिखता है कि मैं आत्मा को जान लिया है, मैंने आत्मा को जानकर कैसे जाना, जैसे जाना ऐसे जान लिया, और जानकर मैं सबको बात बताता हूं, तुम भी तुम्हारा आत्मा का जानो। बहुबली भगवान के प्रति अलग छोड़ दो, देवगुरु शास्त्र का अलग छोड़ दो, तो कुटुंब परिवार की बात तो वो तो पाप का परिणाम है, वो तो बात है ही नहीं। तो आचार्य महाराज फरमाते कि जब ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभास होता है, उसी समय ज्ञायक पणे जनायो, ज्ञेय पणे नहीं जनायो, राग पणे नहीं जनायो, राग का कर्ता पणे नहीं जनायो, इंद्रिय ज्ञान का कर्ता पणे नहीं जनायो, और इंद्रिय ज्ञान ज्ञेय हुआ ऐसा ज्ञान रूपी नहीं जनायो। राग जो ज्ञेय हुआ वो रूप नहीं जानने में आया, राग रूपे तो नहीं जनायो, पर राग का ज्ञान रूपे भी मैं जानने में नहीं आया, मैं तो ज्ञायक रूप जानने में आया। जाननारो जनायो, जाननारो जनायो, वो भी भेद है। जाननारो जनायो तो दो आत्मा नहीं है, जाननारो एक ने जनायो ऐसा नहीं है, मगर भेद करके दूसरे को आचार्य महाराज समझाते हैं, मगर लायक जीव को भेद को ग्रहण नहीं करना, भेद के द्वारा अभेद ग्रहण करने ला, जो भेद को ग्रहण करता है वो देशना लब्धि नास्ति, देशना लब्धि सुनने के लायक नहीं, व्यवहार के द्वारा परमार्थ बताना हमारा इरादा है। व्यवहार का लक्ष्य छोड़ दे, भेद के द्वारा अभेद बताने का हमारा इरादा है, भेद बताने का इरादा नहीं है। मगर क्या करे, समझाने के लिए इतना तो भेद करना पड़ता है, नहीं पर करना पड़ता है। ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जणायो, सविकल दशा में जब प्रतिमा का दर्शन करते हैं तब जाननारो जणाय छे, अने निर्विकल ध्यान में जाय छे त्यारे पण तो 24 कलाक हर समय जो अनुभव के काल में जाननारा जणाया ए सविकल दशा में भी जाननारो जणाय छे, पर पदार्थ जणातो नथी। पर पदार्थ ना लक्ष्ये थोड़ो अशुभ शुभाशुभ भाव थाय ए जणातो नथी, अने एने जाणनारो जे इंद्रिय ज्ञान એ પણ જણાતું નથી, અને કર્તા કર્મ નો ભેદ પણ જણાતો નથી, અભેદ પણ આત્મા જણા જાય। અચ્છા, જે ગુજરાતી માં એક દફે જો આત્મા કા દર્શન હુઆ જિસકો જ્ઞાયક પણે, મેં તો જાણનાર હું, મેં કરનાર નહીં હું, મેં કરતા નહીં હું, મેં તો જ્ઞાતા હું, જ્ઞાતા કા જ્ઞાન હુઆ, જ્ઞાયક કા જ્ઞાન હુઆ, ઓ જ્ઞાયક કા જ્ઞાન હોને સે बाद ज्ञायक का ज्ञान नष्ट होता ही नहीं है। ज्ञायक का ज्ञान जो प्रकट हो गया उसको ज्ञायक का ज्ञान नष्ट होता नहीं है, सम्यक ज्ञान नाश नहीं होता है। तो फरमाते हैं कि ये जो निर्विकल ध्यान में ज्ञायक को मैंने जाना, अभी सविकल दशा में देवगुरु शास्त्र भी प्रतिभास होता है मेरा ज्ञान, उसका मैं निषेध नहीं करता हूं, मगर मैं उसको जानता हूं कि उस समय जाननार को जानता हूं, कीमत यह है। अच्छा, देवगुरु शास्त्र जानने में नहीं आता है कि वो नहीं आता है। अच्छा, तो देवगुरु शास्त्र का लक्ष्य से थोड़ा प्रशस्त राग तो आया कि नहीं, तो राग कर्ता का कर्म है कि नहीं, तो ज्ञाता का ज्ञेय है कि नहीं, राग कि नहीं, परमार्थ नहीं। अच्छा, और राग को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान वो जानने में आता है कि नहीं, वो सब गौण हो जाता है सब गौण होकर उधर तो मेरा समय सफर ज्ञाय की जानने में आता है। 24 घंटे नींद में भी मुद्रित अवस्था में भी, निद्रा अवस्था मुद्रित होती है ना, जब उपयोग नहीं रहता है लब्ध रहता है, मगर परिणति में भगवान आत्माएं समय समय जानने में आ रहा है, तो समय समय प्रतीति भी उसकी हो रही है, इसलिए इसलिए संवर निद्रा चालू रहती है। एक समय जो ज्ञान आत्मा को जानने से छूट जावे तो अज्ञानी बन जाता है, ऐसा होता नहीं है। देखो, एक सदा सुखदास हो गया पंडित जयपुर में, प्रसिद्ध है दिगंबर संप्रदाय में, उसका नाम प्रसिद्ध है रत्नकंठ सावकाचार की टीका उसने लिखा है। वो टीका में गाथा 11वीं गाथा है, 11 गाथा रत्नकंठ सावकाचार और सदा सुखदास जी कासलेवाल की टीका, उसकी गाथा 11 10 और 1 उसका भावार्थ में वो लिखते हैं। जो समस्त वस्तु जल कै है सो हमारा ज्ञान स्वभाव मैं अवलोकन करूं हूं, हमारे ज्ञान के बाह्य किसी वस्तु को मैं नहीं देखूं हूं, नहीं जानू हूं। जो कदाचित आगे, जो कदाचित हमारा ज्ञान है सो निद्रा करी मुद्रित हो, यार उपयोग बंद थे ने लब्ध रूप निद्रा अवस्था में हो मुद्रित हो जाए, तथा एक बात निद्रा की बात किया, अभी शरीर में कोई रोग आ जावे साधक को उसकी बात करते हैं, तथा रोगादि करी मूर्छा करी मुद्रित हो जाए तो समस्त विद्यमान है, तो समस्त लोक विद्यमान है तो हूँ, અભાવ રૂપસાહી ભયા, યા કઈ હમારા લોગ તો હમારા જ્ઞાન હી હૈ. આહા, ઉસકા ભાવાર્થ ગુજરાતી મેં ક્યાં આવી? જે સમસ્ત વસ્તુ અમારા જ્ઞાન સ્વભાવમાં ઝળકે છે, અમારા જ્ઞાન સ્વભાવમાં ઓ પ્રતિબિંબ હોતા હૈ, ઓ બિંબે ઓ પ્રતિબિંબ હોતા હૈ, ઝળકે છે, તેનું હું અવલોકન કરું તો તેનું યાને કિસ કહો? જ્ઞાન કા, ઉસકા નહીં, ક્યોંકિ ઓ જિસમે પ્રતિભાસ હુઆ જ્ઞાન મેં, તો જ્ઞાન કા અવલોકન કરું તો તેનું અવલોકન કરું તો અમારા જ્ઞાન સિવાય બહારમાં કોઈ પણ વસ્તુને હું દેખતો નથી, જાણતો પણ નથી. નિદ્રા અવસ્થામાં મુદ્રિત થઈ જાય તથા રોગ આદિક વખતે મૂર્છિત થઈ મુદ્રિત થઈ જાય તો સમસ્ત લોક જે વિદ્યમાન છે તો પણ અભાવરૂપ જેવું થયું, કારણ કે અમારો લોક તો અમારા જ્ઞાન હૈ. હમ તો જ્ઞાન પર નજર રખતા હૈ, જ્ઞાન પર નજર રખતે હૈ તો લોકાલોક ક્યાં કોઈ ભી પ્રતિભાસ હોય, અમારા લક્ષ્ય જ્ઞેય પર નહીં હૈ, જ્ઞાકાર જ્ઞાન પર નહીં હૈ, જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન પર હૈ, તો જ્ઞાની દિખતા હૈ, ઓર કોઈ દિખતા હૈ નહીં. એસી મસ્તી ચડ જાતી હૈ જ્ઞાની કો. જો કુછ ઝલકતા જ્ઞાન મેં તો જ્ઞેય નહીં બસ જ્ઞાન હૈ. જ્ઞેયકૃત કિંચિત મલિનતા નહીં હૈ, ઓ સહજ સુ સહજ સ્વચ્છ સુ જ્ઞાની હૈ. રાગ જ્ઞાન મેં જલકા તો જ્ઞાન મલિન હુઆ? મલિન નહીં હોતા હૈ, મલિન હુઆ એસી ભ્રાંતિ હો જાતી હૈ અજ્ઞાની કો, જ્ઞાની કો ભ્રાંતિ હોતી નહીં હૈ. દુઃખ જ્ઞાન મેં જલકતા હૈ, ઉપયોગ મેં દુઃખ તો જલકતા હૈ, મગર દુઃખ જ્ઞાન મેં આતા નહીં હૈ. ઓર દુઃખ પર દ્રષ્ટિ નહીં હૈ, ઇસલિયે દુઃખ પરમાર્થ સે જાનને મેં આતા નહીં હૈ. પરમાર્થ સે તો જ્ઞાન કા અવલોકન કરતા હું, વ્યવહાર સે દુઃખ કા જ્ઞાન, રાગ કા જ્ઞાન વ્યવહાર સે, પર પદાર્થ કા જ્ઞાન હોતા હૈ. નિશ્ચય કી ધૂન જિસકો ચડ જાતી હૈ ઉસકો વ્યવહાર ગૌણ હો જાતા હૈ. ઓર નિશ્ચય કા લક્ષ પક્ષ હૈ, ઓર જબ નિશ્ચય કો લક્ષ છોડ જાતા હૈ જીવ, તો વ્યવહાર મેં જીવ ફસ જાતા હૈ. અનાદિકાળ સે વ્યવહાર કા જીવ કો પક્ષ હૈ. દેખો 11મી ગાથા કા ભાવાર્થ પડે જરા અચ્છા હૈ. પ્રાણીઓને પ્રાણીઓને પ્રાણી અને જીવ 10 પ્રકાર કા પ્રાણ સે જીવ જીતા હૈ તો ઇસ અપેક્ષા સે પ્રાણી કહા જાતા હૈ. તો પ્રાણીઓને ભેદરૂપ વ્યવહારનો પક્ષ તો અનાદિકાળ સે હૈ, યાને પ્રાણીઓ કો ભેદરૂપ વ્યવહાર કા પક્ષ અનાદિકાળ સે હૈ. વ્યવહાર નહીં હૈ, વ્યવહાર નહીં હૈ અજ્ઞાની કે પાસ. નિશ્ચયપૂર્વક વ્યવહાર હોતા હૈ ઓ અજ્ઞાની કે પાસ, નિશ્ચયપૂર્વક કા વ્યવહાર નહીં હૈ. તો વ્યવહાર નહીં હૈ તો ક્યાં હૈ? કે વ્યવહાર કા પક્ષ. પુણ્ય સે ધર્મ હોગા, પરંપરાએ ધર્મ હોગા, એસા પક્ષ કરતા હૈ. પુણ્ય તત્વ તો સાધક કે પાસ ઉત્પન્ન હોતા હૈ, મગર પુણ્ય કા પક્ષ નહીં હૈ. અને અજ્ઞાની પુણ્ય કા પક્ષ કર લેતા હૈ. પુણ્ય કા પક્ષ મિથ્યાત્વ હૈ, પુણ્ય ચારિત્ર કા દોષ હૈ. પુણ્ય કા પરિણામ મિથ્યાત્વ નહીં, પુણ્ય સે લાભ માનના વો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ. પુણ્ય તો હોતા હૈ, યે યે સબ સુનતે હૈ તો પુણ્ય તત્વ હૈ કે નહીં? પાપ તત્વ તો નહીં હૈ, પુણ્ય તત્વ હૈ કે નહીં? તો પુણ્ય તત્વ મિથ્યાત્વ નહીં હૈ. પુણ્ય સે લાભ માનના, પુણ્ય કો મેરા માનના, પુણ્ય કે તત્વ કે કરતા બુદ્ધિ માનના, ઉસમે સુખ બુદ્ધિ માનના, વો મિથ્યાત્વ હૈ. પુણ્ય તો ચારિત્ર કા દોષ હૈ. પાંચ મહાવ્રત પુણ્ય હૈ, તો પુણ્ય સે લાભ માનના વો મિથ્યાત્વ કા દોષ હૈ. પુણ્ય તો હોતા હૈ તો ઇધર વ્યવહાર કા પક્ષ. અનાદિકાળ સે જીવ કે પાસ વ્યવહાર તો આયા હી નહીં હૈ, કેમ કે નિશ્ચય કે બિના વ્યવહાર હોતા નહીં હૈ. વ્યવહાર નિશ્ચય સાપેક્ષ હોતા હૈ, વ્યવહાર નિશ્ચય નિરપેક્ષ કભી હોતા હી નહીં હૈ. ક્યા કહા? વ્યવહાર નિશ્ચય સાપેક્ષ હી હોતા હૈ. व्यवहार निश्चय निरपेक्ष होता ही नहीं है। तो व्यवहार का पक्ष अनाधिकार का जीव को है, भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनाधिकार से है, एक बार। अने इसका उपदेश भी एक क्रिया करो धर्म होगा, इतना यात्रा करो तो धर्म होगा, इतना तप करो, शुभ भाव करो, मंदिर बंधाओ तो धर्म होगा। बेंगलोर में मंदिर बंधाया, ये दोनों स्वामी जी ने कहा कि भले मंदिर में धर्म अपने अपने बनाया, मंदिर 12 लाख रुपया दो मिलकर खर्चा, मगर धर्म धर्म उसमें है नहीं, हो शुभ भाव ऐसा जानना। पैसा भी गया, ये क्या है, ऐसा नहीं है। धर्म रुचि वाला जीव को ये मंदिर बंधाने का भाव आता है, मगर उसने बांधा नहीं है, मंदिर का कर्ता नहीं है। ओहो, ये विश्लेषण भेद ज्ञान का ज्ञानी की ओरखान होना, वो भी एक महाभाग्य की बात है। ओरखान होना कठिन है, क्योंकि ज्ञानी का जो आत्मभूत लक्षण है उसको पिछाड़ना मुश्किल है। ज्ञानी की पास आत्मभूत लक्षण है, अनुभूति से पहचान जाता है, और बाह्य व्यवहार से उसकी पहचान, क्योंकि व्यवहार तो मिथ्या दृष्टि और साधक अविरति सम्यक दृष्टि का एक ही सर का होता है। वो भी पूजा करता है, वो भी पूजा करता है, वो यात्रा जाता है, वो यात्रा जाता है। तो कल प्रश्न आया था, देखो दूसरी बात, ये पक्ष नहीं है, वो एक कांजी स्वामी ज्ञानी है, वो पक्ष की बात नहीं है। प्रभु सुन, राग से ज्ञानी पिछाना नहीं जाता है, ज्ञान से ज्ञानी पिछाना जाता है। कहे प्राणियों ने भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनाधिकार का है, शुभ भाव से करते करते मोक्ष हो जाएगा, और शास्त्र पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो जाएगा, वो भी व्यवहार का पक्ष है, उसकी छुट्टी नहीं है पंडित के लिए। वो तो वितरागी शासन है, वो जैन शासन तो वितरागी शासन है, राग वितराग शासन ही नहीं है। जिन शासन अनुभूति को जिन शासन कहते हैं, भेद रूप अनाधिकार अने उपदेश पण उसका उपदेश, व्यवहार का उपदेश बहुधा सर्व प्राणियों परस्पर करे है, परस्पर ऐसा करना, हाँ बराबर है, आप कहते हैं ठीक है, आप कहते ही ठीक है, ठीक में ठीक मिला देते हैं, क्योंकि अपनी रुचि है ना, ऐसा उपदेश आवे ने, हाँ बराबर है, ऐसा तो करना ही चाहिए, परस्पर उपदेश देते हैं। दो बात किया, तीसरी बात अभी बड़ी जिनवाणी माँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अंदर भी व्यवहार नो उपदेश शुद्ध नहीं नो हस्तालम जानी बहु करो छे, ज्ञान से आत्मा दर्शन से आत्मा, वो व्यवहार ने क्या कथन है, नीचे ने क्या कथन नहीं है, वो ज्ञान को आत्मा मानना वो व्यवहार का पक्ष है, ज्ञान को आत्मा जानना वो निश्चय का पक्ष और पक्षातिक्रांत है उसमें। यानी जिनवाणी में व्यवहार नो उद्देश्य ज्ञान तो आत्मा दर्शन तो आत्मा असर थोड़ा अपेक्षा से ऐसा भी आता है कि मनुष्य जीव है, मनुष्य जीव है, रागी जीव है, ऐसा थोड़ भी कोई एकदम विद्या थोल अज्ञानी हो ने उसके लिए ऐसा भी कहा जाता है। व्यवहार का व्यवहार के द्वारा निश्चय का प्रतिपादन होता है, उस दूसरा तो उपाय, क्योंकि निश्चय तो वचनातीत है, निश्चय तो वचनातीत है। तो जिनवाणी में व्यवहार ना उपदेश शुद्ध नहीं का अवतार ज्ञानी सहायक ज्ञानी बहु करो छे, पर उसका फल तीन बात अभी टोटल लगा दिया, उसका फल संसार जच है, उसका फल मिथ्या तो जच है, संसार यानी हाँ मिथ्या तो ही है, मिथ्या तो कहो के संसार कहो, एक ही बात है। अभी दूसरा शुद्ध नहीं नो पक्ष तो दो मिनट है, शुद्ध नहीं का पक्ष तो कभी आया ही नहीं है। जीव को शुद्ध नहीं का पक्ष कभी आया अर्थात शुद्ध आत्मा का अनुभव कभी हुआ ही नहीं है। अनेनो उपदेश पर विरल है, ये शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ऐसा उपदेश तो विरल क्या क्या कोई कोई जगह पर है। वो पटार जी ने भी कल बातचीत में आया था कि ये बहुत साल से 11 शताब्दी के बाद ये जो साधना की प्रक्रिया थी वो नष्ट होती जाती चली, वो ऐसा ही हो गया, अंधकार हो गया, अंधकार हो गया। ऐसा उपदेश पर विरल है, शुद्ध आत्मा का उपदेश विरल है। क्या क्या कोई कोई जगह है, नहीं है ऐसा नहीं, क्या क्या है। तिथि उपकारी श्री गुरु है, श्री गुरु आत्मज्ञानी को गुरु कहा जाता है। श्री गुरु ज्ञान लक्ष्मी जिसको प्रकट हो गई उसका नाम गुरु है। शुद्ध नहीं का ग्रहण का फल मोक्ष जानी ने उपदेश प्रदान ताती दीदो छे। शुद्ध नहीं ना उपदेश का फल तो मोक्ष है, मुख्यता से दिया है। शुद्ध नहीं भूतार्थे सत्यार्थे नो आश्रय करवासी समय दृष्टि हो जाता है। यदि एक, एक, एक मिनट के अंदर दूसरा बात बताता हूं कि जयचंद पंडित हो गया ने, उसने ये शास्त्र पूरा करने के बाद अपनी वेदना लिखी, उसने अपनी वेदना लिख दिया। क्या लिखा देखो, ये गुरु परंपरा चली गई है ऐसा लिखा है। पानू 628 है। કેટલું બની શકું તેટલું સંક્ષેપથી પ્રયોજન માત્ર લખ્યું છે, તે વાંચીને ભવ્ય જીવો, વાંચકર ભવ્ય જીવો, પદાર્થને સમજો, કોઈ અર્થમાં હિના દીખતા હોય કોઈ માત્રા મેં વ્યાકરણ મેં તો બુદ્ધિમાનો મૂળ ગ્રંથમાંથી જેમ હોય તેમ યથાર્થ સમજી લેજો। આ ગ્રંથના યાને સમયસાર કા ગ્રંથ હે જો શાસ્ત્ર, ઉસકા ગુરુ સંપ્રદાયનો ગુરુ પરંપરાગત ઉપદેશનો વ્યવચ્છેદ થઈ ગયો છે। આહા, શુદ્ધ આત્મા કી વાર્તા વ્યવચ્છેદ હો ગયા હે। માટે જેટલો બની શકે તેટલો યથાશક્તિ અભ્યાસ થઈ શકે છે, તો પણ જેઓ શ્યાદવાદમય જીન મતની આજ્ઞા માને છે તેમને વિપરીત સિદ્ધાંત થતો નથી। ક્યાંક અર્થનું અન્યથા સમજવું પણ થઈ જાય તો વિશેષ બુદ્ધિમાનનું નિમિત્ત મળે યથાર્થ સમજી જાય છે, યથાર્થ થઈ જાય છે। જીન મતની શ્રદ્ધા વાળો અઠાગ્રહી હોતો નથી। હો ગયા ટાઈમ, 2 મિનિટ જ્યાદા હો ગયા। શ્રી સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર હૈ, જો શુદ્ધાત્મા કા સ્વરૂપ ક્યા હૈ વો બતાને વાલા શાસ્ત્ર હૈ। તો આજ તક આત્મા ને બહુત કુછ જાના, એકેન્દ્રિય હોકર જાના, दो इंद्रिय होकर जाना, तीन इंद्रिय होकर जाना, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगनी असंगनी होकर एक आत्मा का, आत्मा के अलावा आत्मा को छोड़कर बहुत 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 जाना। कुछ किया तो आज तक उसने है ही नहीं, करने का अभिमान तो किया मगर अनादि काल से आज तक आत्मा ने कुछ किया तो है ही नहीं, करने का अभिमान किया मगर किया कुछ नहीं है और अपने आत्मा का अलावा छोड़कर सबको जाना, आत्मा को छोड़कर सबको जाना। मर आज तक आत्मा ने अपने शुद्धात्मा का स्वरूप जाना नहीं है, ऐसे आचार्य भगवान के ज्ञान में आ गया कि ये अज्ञानी प्राणी ने आज तक अपना शुद्धात्मा का स्वरूप जाना नहीं है। अपने आप से तो जाना नहीं है, मगर मैंने मेरा स्वरूप जान लिया है तो ऐसा स्वरूप दूसरा भी जाने, शुद्ध आत्मा को पहचाने, शुद्ध आत्मा को अनुभवे। इसलिए ये शास्त्र की रचना मैं करता हूं। ये शास्त्र में नव तत्व का विस्तार तो आएगा, करूंगा, मगर नव तत्व का स्वरूप बताना वो आशय नहीं है। ये नव तत्व में कहूंगा, लिखूंगा, उसका विस्तार भी करूंगा, मगर नव तत्व बताना वो मेरा ध्येय नहीं है। इस शास्त्र के लिखते समय मेरा तो ध्येय है एकत्व विभक्त आत्मा को कहने का व्यवसाय मैंने किया है, यानी नव तत्व से भी भिन्न जो शुद्धात्मा है वो आज तक उसने सुना भी नहीं है कि क्या नव तत्व से आत्मा भिन्न हो सकता है, क्या दसवां तत्व है कोई कि नहीं। भैया शांति से धीरज से मेरी बात सुन, सुनने के बाद स्वतंत्रपणे विचार कर, विचार करके जो मैं कहता हूं वो तेरी समझ में आ जाएगा कि ये नव तत्व जो व्यवहार नहीं का विषय है, जो परिणाम है, वो परिणाम से उत्पाद वैसे ये ध्रुव तत्व अंदर में न्यारा है तो नव तत्वों के बीच में ही, नव तत्व से बाहर तो शुद्धात्मा है ही नहीं। मगर केवल नव तत्व को तो अनंत बैर जीव ने नव तत्व का लक्ष्य पूर्वक जाना, आत्मा का लक्ष्य करके नव तत्व नहीं जाना है। क्या कहा? नव तत्व को तो जाना, मगर केवल नव तत्व का भेद का लक्ष्य कर नव तत्व को जाना। मगर नव तत्व में जो रहा अंदर में छुपा परमात्मा, उसको आत्मा ने जाना नहीं है, और आत्मा ने आत्मा शुद्धात्मा नहीं जाना तो आत्मा का लक्ष्य पूर्वक नव तत्व भी जाना नहीं है, जाना हुआ भी नहीं जाना है। नव तत्व तो सब मानते हैं ना, जैन धर्म में नव तत्व तो सब जानते हैं, मानते हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है, नाम में विवाद नहीं है, भाव में विवाद भले हो, भाव में तो विवाद है ही, मगर नाम में विवाद नहीं है। नव तत्व को तो अनंत बैर 11 रंग पढ़े तब जान तो लिया, मगर नव तत्व का लक्ष्य पूर्वक नव तत्व जाना आत्मा का लक्ष्य पूर्वक अनुभव पूर्वक नव तत्व को जाना नहीं है। आनंद कुमार जी आगे अच्छे मैसूर रहते हैं, मैसूर वहां पाठशाला सब पढ़ाते सबको। धन्य कुमार इधर आए थे ना, उसने बात किया था, अच्छा काम करते हैं। क्या कहा कि मैं समयसार लिखता हूं और उसके अंदर नौ तत्व का विस्तार भी मैं करूंगा है। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव, आश्रव के पीछे संवर लिखा है और तत्वार सूत्र में आश्रव के बाद बंध लिखा है, उसमें क्रम में फर्क है। तत्वार सूत्र में क्या है कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ऐसा क्रम है। और समयसार में क्या क्रम है कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव, आश्रव के बाद संवर लिखा है, संवर के बाद निर्जरा लिखा है, निर्जरा के बाद बंध लिखा है, बंध के बाद मोक्ष लिखा है। इसमें क्रम में फेर है। वो तत्वार सूत्र है ज्ञान प्रधान कथन, ये दृष्टि प्रधान कथन है। तो आश्रव पूर्वक जो बंध होता है ऐसी परिपाटी तो अनादि काल से जीव ने किया, मगर आश्रव का अभाव पूर्वक संवर नहीं किया है, इसलिए इसमें फेरफार है। कि आश्रव के बाद संवर क्यों लिखा कि वो जो शास्त्र पढ़ेगा वो पढ़ने वाला मिथ्या दृष्टि होने पर भी मिथ्यात्व नाम का जो आश्रव उसकी पर्याय में चलता है वो जो शुद्धात्मा को अनुभव जानेगा तो आश्रव का अभाव पूर्वक संवर की दशा प्रकट होगी, इसलिए आश्रव का अभाव पूर्वक संवर होता है, आश्रव पूर्वक बंद होता है। वो परिपाटी छोड़ दिया। इंदौर ना एक बड़ा पंडित ने वो बात पूछा था, बहुत साल 20 साल पहले की बात है, नहीं नाम नहीं लेना है, पूछा था, तभी भी वो जीता है। तो उसने पूछा कि लालचंद भाई एक बात थी, तत्वार सूत्र में तो आश्रव के बाद बंध लिखा और आचार्य महाराज कुंदकुंद भगवान ने तो आश्रव के बाद संवर लिखा, एक क्रम में शब्द का क्रम में फेरफार है तो क्या है। मैंने कहा कि आश्रव पूर्वक बंध होता है उसमें तो संसार की सिद्धि होती है, इसलिए पर्यार्थिक नहीं का व्यवहार नहीं का कथन है। और ये जो समयसार शास्त्र है शुद्धात्मा को जानेगा उसको आश्रव के बाद बंध नहीं आएगा, आश्रव पूर्वक बंध होने वाला नहीं है, आश्रव का अभाव पूर्वक समर होने वाला। कुनकुन भगवान का नाम तो तीसरा है, उसमें हेतु है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम, तीसरा नाम, नहीं तर तो तीन केवली और पांच सूत केवली भी भद्रबाहु स्वामी कल गए थे ने, उसकी जो तपोभूमि वहां गए थे, चरण पादुका भी है, गुफा भी है, ध्यान में मग्न था, अंगधारी 11 अंग 14 पुरों का ज्ञान था, मगर उसका नाम तीसरा परिपाटी में नहीं आया। तीसरा नाम कुनकुन भगवान का आया। कुनकुन भगवान के बाद जो कुनकुन भगवान से प्रभावित हुआ और कई जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो ये परंपरा चली। तो आश्रव पूर्वक बंद नहीं होगा, जो समयसार पढ़ेगा ने भाव से, भाव से हो ऐसे नहीं, पंडित होने के लिए नहीं, दूसरे को समझाने के लिए ये शास्त्र नहीं है, मैं सीख लू पढ़ लू दूसरे को समझाऊं, अरे ये तो केवल अपने हित के लिए पढ़ने की बात, जो पढ़ेगा उसको आश्रव का अभाव पूर्वक समर होगा, इसलिए आश्रव के बाद संवर लिख दिया। तो आचार्य भगवान ने कहते हैं, फरमाते हैं कि समय सार की रचना में करता हूं, नौ तत्व का ज्ञान तो मैं करा देऊंगा। हिंदी में क्या आता है, करा दूंगा, नौ तत्व का ज्ञान तो करा दूंगा, मगर नव तत्व का ज्ञान करावना मात्र मेरा प्रयोजन नहीं है। नव तत्व को भी गौण करके एक नव तत्व से भी भिन्न, बंध मोक्ष का परिणाम से भी भिन्न एक शुद्धात्मा है, मैंने देख लिया है। मेरे को नव तत्व का ज्ञान तो है, मगर एकीला नव तत्व का ज्ञान नहीं है मेरे पास। शुद्धात्मा का ज्ञान है, शुद्धात्मा का ज्ञान होते होते नव तत्व का ज्ञान हो गया है मेरे को, तो नव तत्व का ज्ञान तो कराऊंगा, मगर केवल नव तत्व का ज्ञान करे ना कराने का ये समय सार का है। तो नव तत्व से भिन्न अंदर परमात्मा, ज्ञानानंद परमात्मा, चिदानंद आत्मा अंदर में ज्ञायक देव विराजमान है, वो बताने का मेरा आशय, शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है वो बताने का आशय इरादा है। और शुद्धात्मा का अनुभव कैसे हो वो भी मैं कहूंगा साथ साथ में। एकला शुद्धात्मा बताकर मैं वो बात छोड़ूंगा नहीं, अनुभव और अनुभव का विषय बस दो बात की प्रधानता समय सार में है, आत्मा का अनुभव और अनुभव का विषय। अनुभव कब आवे कि अनुभव का विषय लक्ष्य में आवे, तो अनुभव का विषय लक्ष्य में जिसमें नहीं आवे तो आत्मा का अनुभव हो सकता नहीं है। अनुभव की कीमत नहीं है, अनुभव का विषय की कीमत है। अनुभव का विषय जो शुद्धात्मा है जिसका लक्ष्य में आएगा उसका नाम ही आत्मा की अनुभूति है। तो इधर छठी गाथा चलती है, अपूर्व है, सार में सार है, समय सार का सार, और इसका जो सार छठी गाथा में ज्ञायक, पांच गाथा तक तो प्रस्तावना लिखी उसमें ज्ञायक नाम आया नहीं, छठी गाथा में ज्ञायक नाम आया। और जो कुनकुंदाचार्य भगवान के इधर अंदर में फोटा भी है, देखो फोटा है कि नहीं इसमें मालूम नहीं मेरे को, फोटा है ना, अच्छा देखता हूं मैं इसमें होगा, हाँ इसमें भी है। देखो ये जो कुनकुंद भगवान लिखते हैं ना ताल पत्र पर, उसमें छठी गाथा लिखी है। ये जो फोटा है ने उसमें जो ताल पत्र है ने रवि हो दी अपमतो ऐसा लिखा है इसमें अक्षर वंचाई है। देखो ये फोटा में छठी गाथा पहली आया, देखो फोटा में हो तो उसमें माल भरा है इसका है। तो ये फोटा में भी तालपत्र पर छठी गाथा वहां से समय सार सर्व होता है, पांच गाथा तो प्रस्तावना का है। वंदन की गाथा, जिनवाणी का गाथा, प्रमाण से क्या स्वरूप है, समय का स्वरूप तो बहुत बहुत, मैं कहने का क्या आशय है आज तक तेने सुना नहीं, ये सुनने जैसी चीज, ले पांच गाथा में ये सब लिया, छठी गाथा में गया एक भाव बस। तो ये छठी गाथा का पहला पारा तो चल गया, दूसरा पारा चल रहा है। दूसरा पारा में आचार्य भगवान फरमाते हैं कि जिसको अग्नि की प्रसिद्धि न हो इसको कहना पड़ता है कि अग्नि का क्या स्वरूप है, कि जो काष्ठ को जलावे, लकड़ी को जलावे, तण और पर्ण को जलावे, पांदरा चुका पांदरा को जलावे, इसका नाम अग्नि है। तो लक्ष्य काष्ठ पर नहीं रखना चाहिए, अग्नि लकड़ी को जलावे सो अग्नि, वो तो व्यवहार से समझाया जाता है, जिसको साक्षात अग्नि की उष्णता का वेदन नहीं है इसके लिए वो बात है, बाद में लकड़ी का संबंध छोड़कर अग्नि तो अग्नि ही है, लकड़ी की अग्नि नहीं है, ईंधन की अग्नि नहीं है, ईंधन समझे ना, बढ़वा लायक पदार्थ जो कोई हो इसका नाम ईंधन है। ईंधन को जलाती है तो ईंधन की लकड़ी है, ईंधन को जलावे तो अग्नि ईंधन की हो जाती है, कभी हो सकती नहीं है। अग्नि तो अग्नि ही है, ऐसे आत्मा पर को जानता है तो क्या पर का हो जाता है। जो अग्नि लकड़ी को जलावे और अग्नि लकड़ी रूप हो जावे तो आत्मा पर को जानने से पर रूप हो जावे, मगर पर को जाने ऐसा व्यवहार से समझाया जाता है, मगर सचमुच तो जानने वाला जानना वाले ही रहता है। पर को जाने न जाने के अपने को जाने, क्या कहा, पर को जाने न जाने या अपने को जाने, सर्व अवस्था में जानने वाला ही रहता है। अग्नि तो लकड़ी को जलावे न जलावे, अग्नि अग्नि रूप हो तो अग्नि तो अग्नि रूप ही है, किसी की इसको अपेक्षा है नहीं। लकड़ी को जलावे तो अग्नि, वो तो पराधीनता हो गई, उसका स्वभाव नहीं रहा। देव कुमार जी, लकड़ी को जलावे सो अग्नि तो पराधीन हो गई, उसका स्वभाव नहीं रहा है, वो तो स्वभाव से अग्नि तो अग्नि ही है। लकड़ी को जलावे कौन न जलावे तो भी आत्मा, ऐसे आत्मा पर को जाने न जाने अपने को जाने, पर को मूल चीज है, मूल मूल माल है इसमें। आत्मा बाहुबली भगवान को जाने न भी जाने, कभी पहाड़ पर न जावे तो न भी जाने या न जाने या अपने को जाने, सर्व अवस्था में ज्ञायक तो सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा गणाय चेतन लक्षण एक है उसका। तो फरमाते हैं तेवी रीते ज्ञा का अर्थवाती थे भाव ने ज्ञायक पर प्रसिद्ध है, लोक के अंदर प्रसिद्ध है कि जो अग्नि का स्वरूप क्या है कि लकड़ी को जलावे सो अग्नि है, ऐसा लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है। मगर अग्नि अग्नि है वो तो कोई किसी कोई प्रसिद्ध है, क्या कहा, अग्नि लकड़ी को जलावे ऐसी बात, लकड़ी को जलावे सो अग्नि ऐसी बात तो सबको प्रसिद्ध है, मगर अग्नि अग्नि से है, निरपेक्ष है, लकड़ी को जलावे कि न जलावे तो भी अग्नि तो अग्नि, वो बात कोई 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 प्रसिद्ध है, सबको प्रसिद्ध नहीं है। इसी आत्मा ऊपर को जानता है तो ज्ञायक है, जानने वाला है, ऐसी बात सबको प्रसिद्ध है, क्या कहा, सूक्ष्म बात है। ये आत्मा है ने, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा है तो आत्मा है उसका सबूत क्या है, सबूत क्या हिंदी में क्या कहें, उसका प्रमाण क्या है, आत्मा है उसका प्रमाण होना, हा प्रमाण है यही को जानता है, इसलिए आत्मा जानना रहे, आत्मा जानना रहे। बस बस गोया गया, क्या कहा, यह अध्यात्म की पराकाष्ठा अंतर्मुख होने की गाथा है, अंतर्मुख होने की गाथा है कि आत्मा है, वो आत्मा की सिद्धि करो, आत्मा है तो उसको कोई प्रमाण होना चाहिए कि हां प्रमाण है कि दो प्रमाण क्या है कि जो आत्मा है जो पर को जानने वाला है सो आत्मा है। हा पर को मैं जानता तो मैं खंबे को जानता तो उसको जो